नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में मोकामा से मुंगेर के बीच फोर लेन सड़क के निर्माण को स्वीकृति दी। भागलपुर तुमका रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मिली मंजूरी। नेपाल में जारी गतिरोध को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट। नेपाल के जनकपुर और मधुबनी के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित। मुजफ्फरपुर की सीबीआई अदालत ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सभी तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 30,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद और बढ़ा। कांग्रेस ने कहा, बिहार की जनता ही अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। राजद ने तेजस्वी प्रसाद यादव को बताया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोकामा से मुंगेर के बीच फोर लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसे बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक होगी और इस पर 4,447 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना से लगभग 15 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 18.5 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
मोकामा से मुंगेर फोर लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़ रुपए का। ये इन्वेस्टमेंट होगा दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट काफी करीब करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कम्प्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर का। तो ये करीब करीब पूरे के पूरे सदन बिहार का बड़ा एक मेजर कॉरिडोर कंप्लीट फोर लेनिंग इसका हो जाएगा।
श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर तुमका रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। 177 किलोमीटर लंबे रेलखंड के दोहरीकरण पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
दूसरा प्रोजेक्ट है आज का दो जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग। ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। बिहार झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी। काफी पैसेंजर गाड़ियां, मेल एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ आर्थिक विकास को और गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज मोकामा मुंगेर फोर लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन और भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। इससे लोगों का जीवन आसान होगा और रोजगार तथा कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे। नेपाल में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेपाल की सेना ने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। आगे की स्थिति के आधार पर अगली सूचना जारी की जाएगी। इधर विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन आज सेना की तैनाती के बीच काठमांडू घाटी में माहौल शांतिपूर्ण है। नेपाल में जारी गतिरोध को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर व्यापार चौकियों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिहार पुलिस और एसएसबी की टीम सीमा पर आने जाने वालों की गहन जांच कर रही है। बिहार में भारत नेपाल सीमा 726 किलोमीटर लंबी है और 7 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को छूती है। बिहार में दोनों देशों के बीच सीमा का एक बड़ा हिस्सा खुला है। इसे देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम चंपारण के एसपी डॉक्टर शौरी सुमन ने कहा कि पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस और एसएसपी की टीम संयुक्त गश्त की जा रही है।
हम लोग के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग कराया जा रहा है और वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र है नेपाल से उसमें शांति व्यवस्था कायम है। साथ ही साथ जो डीजी रिजर्व हम लोग के पास उपलब्ध है जो डीआईजी महोदय के आदेश के अनुसार मैनातार में प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, उसके द्वारा भी विधि व्यवस्था को देखते हुए राइड कंट्रोल गियर में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें मूवमेंट किया जा रहा है और जो भी आवागमन लोगों का हो रहा है वो प्रॉपर चेकिंग के साथ किया जा रहा है। जो बाइक्स या जो कार का जो एंट्री है वो भी आपको रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें भी प्रॉपर चेकिंग करा के उसको हम लोग करवा रहे हैं।
मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि सभी सीमावर्ती थानों को अलर्ट पर रखा गया है।
नेपाल में जो अभी सूरत हालात है उसके मद्देनजर मधुबनी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। खासतौर पे जो बॉर्डर के थाना है उसको मैंने आदेश दिया है कि दिन हो या रात को लगातार वहाँ पे जो चौकसी हम लोग बरत रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिप्लॉय की है और जो भी लोग आते हैं या जाते हैं सबको हम लोग स्ट्रिक्टली चेकिंग फिस्किंग करके ही आने जाने दे रहे हैं। हम लोग की कोशिश ये है कि कोई भी अवांछित तत्व न इधर से उधर जाए न उधर से इधर आए ताकि जो विधि व्यवस्था की कोई समस्या न खड़ी होने पाए।
इस बीच नेपाली अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और मधुबनी के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहने, सड़कों पर जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी है। सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779808602881 और 9779801032134। नंबर एक बार फिर सुन लें, नंबर है 9779808062881 और 9779801032134। किसी भी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली से पहले वस्तु और सेवा कर जीएसटी में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। जीएसटी में सुधार आम आदमी पर केंद्रित हैं और 22 सितंबर से लागू होंगे। आज हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों के बारे में। एक रिपोर्ट।
सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पहले के 12% जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि रबड़ पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। विष्णु और सौम्या के साथ दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से बिहार को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री कोसी मेची लिंक परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 तारीख के प्रस्तावित यात्रा पर हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से 2 जगह कार्यक्रम होने हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट से उस दिन हवाई सेवा शुरू होगा और दूसरा जो विभिन्न योजना खास करके कोसी मेची लिंक की परियोजना हो, पावर सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ रुपया पीरपैती में हमारा पावर प्लांट में लग रहा है और विभिन्न योजना मिलाकर लगभग 40,000 से 45,000 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।
इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिली है।
प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया की धरती पर, 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और अब तक एक बड़ा रिकॉर्ड बना है बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभुकों के खाते में अंतरित की। श्री कुमार ने 1,13,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में लगभग 1,264 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी भी उपस्थित थे। इधर मुख्यमंत्री ने आज पटना में सड़क और आधारभूत संरचना से संबंधित 1,433 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सभी 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 30,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरपुर की सीबीआई अदालत ने दोषी रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने लड्डन मियां और ऋषु जायसवाल समेत 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। राजदेव रंजन की वर्ष 2016 में सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद और बढ़ गया है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार की जनता ही अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में सभी दलों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए।
बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है।
इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि गठबंधन में सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। जब संतुलन सीटों की होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हिस्से में सब खराब सीटें जा रही हैं, किसी और के हिस्से में सब अच्छी सीटें जा रही हैं। आपको भी अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीटें आपको भी मिलेंगी, किसी और को अच्छी भी मिलेंगी और खराब भी मिलेंगी। तो संतुलन रहना चाहिए, ये हम मानते हैं और हमारे गठबंधन के सारे पार्टनर्स मानते हैं।
इस बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि निर्विवाद रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे।
एक बात स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सहयोगी हो या हमारे विरोधी हो, वो सब जानते हैं कि तेजस्वी जी के लिए जनता बेकरार है। अब बयान वो दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिए, हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, ये भी नहीं कहा है कि तेजस्वी जी के अलावा कोई दूसरे होंगे।
प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में मोकामा से मुंगेर के बीच 4-लेन सड़क के निर्माण को स्वीकृति दी। भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मिली मंजूरी। नेपाल में जारी गतिरोध को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट। नेपाल के जनकपुर और मधुबनी के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित। मुजफ्फरपुर की सीबीआई अदालत ने सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सभी 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 30,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद और बढ़ा। कांग्रेस ने कहा बिहार की जनता ही अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। राजद ने तेजस्वी प्रसाद यादव को बताया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।